परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। यदि आज हमारे बीच में कोई हमारे नए श्रोता हैं जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम बाइबल अध्ययन में शमूएल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि शाऊल ने आज्ञा नहीं मानी और अमालेकियों के पशुओं को बचा लिया और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे दंड स्वरूप राज सिंहासन से उतारने का निर्णय लिया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इसके पूर्व कि हम आगे जाएं, आइए हम सब आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमें नई नई बातों को सिखाते हैं और इस बात को आप स्पष्ट और प्रकट करते हैं कि परमेश्वर जो सच्चा और जीवित है, जो न्यायी है, हमसे प्रेम करता है। पिताजी, आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक भाई बहन जो आपके वचन को सुनते हैं समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार जीवन जी सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशानी हालत में हैं। प्रभु, आप उनके भी सुधि लीजिए, ताकि वे भी आप में स्वस्थ और भले चंगे पाए जाएं और आपको महिमा देने पाएं। इस समय फिर से एक बार हम सबको इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम दाऊद का अभिषेक के विषय में देखेंगे। परमेश्वर दाऊद को राजा होने के लिए चुनता है और शमूएल को बैतलहम भेजता है कि राजा के लिए उसका अभिषेक करे, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल का त्याग कर दिया था। अतः दाऊद को महल में लाया गया कि वीणा बजाकर शाऊल को शांति प्रदान करे। मित्रों, अध्याय 16 हमें एक नए विषय पर लाता है। हम दाऊद को शाऊल की विषमता में देखेंगे। दाऊद परमेश्वर का जन है और शाऊल शैतान का जन है। अध्याय 15 में हमने परमेश्वर द्वारा शाऊल का त्याग देखा था। परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा पालन का एक नहीं परंतु अनेक अवसर दिए थे। उसे सफल होना था परंतु वह हुआ नहीं। परमेश्वर ने शाऊल के राज के परिणाम को देखने की प्रतीक्षा नहीं की। वह तो पहले से ही जानता था परंतु शाऊल को जानने की आवश्यकता थी। मित्रों, शमूएल को भी जानने की आवश्यकता थी क्योंकि वह शाऊल से बहुत अधिक प्रेम रखता था। प्रजा को भी जानना आवश्यक था क्योंकि उन्होंने ही राजा की मांग की थी और शाऊल को राजा चुना था। मित्रों, आज आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। इसके लिए हमें परखा जाता है। हमें परमेश्वर की आत्मा की सहायता चाहिए, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 उसके 6 पद में हमें कहा गया है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उनकी परीक्षा भी लेता है। आप इसे गलत न समझे कि परमेश्वर परीक्षा लेता है, लेकिन हमारे विश्वास में बढ़ाता है। शाऊल के युग में परमेश्वर की यही रीति थी और आज भी है। याकूब अध्याय 1 उसके 12 पद में लिखता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे मित्रों, फिर वही प्रश्न आता है कि अमालेकियों और आगाग का सर्वनाश क्यों? अमालेक ईसाव का पुत्र था। अमालेकियों ने इसराइल वंशियों पर आक्रमण किया था जब वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने जा रहे थे। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा थी कि वह अमालेक से पीढ़ी प्रति पीढ़ी युद्ध करेगा और उन्हें दंड देगा। अमालेकियों को मन परिवर्तन हेतु 500 वर्ष का समय दिया गया था क्योंकि वे निश्चित रूप से परमेश्वर से विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। मेरे मित्रों, अब परमेश्वर दाऊद को चुनता है कि शाऊल के स्थान पर सिंहासन पर बैठे। परमेश्वर शाऊल को बेतलहम भेज रहा है कि राजा के लिए दाऊद का अभिषेक करे। दाऊद परमेश्वर की पसंद था। परमेश्वर को उसके साथ समस्या हुई थी, परंतु हमारे साथ भी तो परमेश्वर को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? शायद नहीं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला शामुएल 16 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, और यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इसराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बेतलहमी ईशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। मेरे मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए, शामुएल शाऊल का पक्षधर था और शामुएल शाऊल से प्रेम करता था और परमेश्वर द्वारा उसका त्याग देखकर वह बहुत दुखी था। शाऊल को अंतिम चेतावनी देते हुए कि वह राजा के पद से अस्वीकृत हो गया है, अर्थात हटाया गया है, उसे बहुत दुख हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि शामुएल का दुख और अधिक प्रभाव बढ़ा देता है। पहला शामुएल 16 अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम आगे पढ़ते हैं, शामुएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर ईशे को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। मेरे मित्रों, शामुएल ईशे के पास जाने से डर रहा था क्योंकि शाऊल का विरोध करना, अर्थात शाऊल विरोध सुनना नहीं चाहता था। वह आत्मा में परेशान था। इतिहास में हम देखेंगे कि परमेश्वर ही है जो चुनाव करता है। उसने शाऊल को ठीक ठीक बताया कि उसे क्या करना है, परंतु वह उसे आगे की जानकारी नहीं देता है। ज्ञान की कमी उसे सुरक्षित रखेगी। अतः शाऊल बेतलहम में ईशे के घर गया और ईशे और उसके पुत्रों को बलि के लिए बुलवाता है। हम पहला शामुएल 16 अध्याय के 6 और 7 पद में आगे पढ़ते हैं, जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा, परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मित्रों, इस संपूर्ण भाग में हमें सर्वोत्तम अधिक शिक्षाएं दी गई है। अध्याय 15 पद 22 में शामुएल ने शाऊल से कहा था, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आप मैं अपने प्रेम से प्रकट करते हैं कि हम यीशु मसीह की संतान हैं या नहीं। हमारी गवाही में कहे गए शब्द नहीं, हमारे प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता इसे प्रकट करती है। मित्रों, मसीही जीवन सच्चाई है, दिखावा नहीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर जब हमें देखता है तो वह हमारे भीतर देखता है, हमारे पहरावे, हमारे उठने बैठने या बाहरी रूप को नहीं, वह सदैव भीतर देखता है। शमूएल एलीआब के रूप और कद को देखकर सोचता है कि वही परमेश्वर की दृष्टि में अगला राजा होगा, परंतु परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उसका बाहरी रूप मत देख, बाहरी दिखावा देखकर निर्णय मत ले, इस बार राजा का चयन मैं कर रहा हूं। मित्रों, परमेश्वर मन को देखता है और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम मसीह क्षेत्र में भी मनुष्य के बाहरी रूप को देखते हैं, उनके पैसे से, उनकी पद प्रतिष्ठा से उनका मूल्यांकन करते हैं, उनकी कार, उनका घर, उनकी नौकरी आदि से उनका हम मान सम्मान को ज्ञात करते हैं, परंतु परमेश्वर का मापदंड अलग है। उसने शाऊल से कहा कि वह बाहरी रूप को न देखे, परमेश्वर मन को देखता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज आपके और मेरे मन को देखता है कि हम सचमुच में मसीही हैं या नहीं। ईशा ने अपने पुत्रों को एक एक करके शामुएल के समक्ष प्रस्तुत किया। शामुएल ने ईशा पर उसके आने का प्रयोजन प्रकट किया था और ईशा ने अपने 7 पुत्रों की भेंट शामुएल से करवाई थी। हम आगे देखते हैं, पहला शामुएल 16 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, यूं ही ईशा ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा और शामुएल ईशा से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शामुएल ने ईशा से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामुएल ने ईशा से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि निश्चय ही दाऊद का पिता भी उसे अपने अन्य 7 पुत्रों की तुलना में नहीं चुनता। पहले तो दाऊद अभी एक किशोर ही था और माना जाता है कि इस समय उसकी आयु लगभग 16 वर्ष की थी और हो सकता है कि इससे भी कम रही हो। वह एक चरवाहा था और भेड़ों के साथ जंगल में था। उसे अधिक ज्ञान भी नहीं था। ईशा भी उसे नहीं चुनता कि अपने भाइयों से ऊपर राजा बने। और सच तो यह है कि उसने दाऊद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने अपने इन 7 पुत्रों पर पूरा विश्वास किया था, अतः उसने दाऊद को अनुष्ठान में बुलाया भी नहीं। शामुएल को जब यह पता चला कि दाऊद भेड़ चरा रहा है तो उसने उससे कहा, उसका सारांश यह था कि यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण काम है और मैं खाने पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि मेरा उद्देश्य पूरा ना हो जाए। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहला शामुएल 16 अध्याय के 12 पद में, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। वचन में लिखा है कि लाली झलकती थी, अर्थात उसके बाल लाल और उसका स्वभाव भी गर्म था। उसका चेहरा आकर्षक था। परमेश्वर सुंदरता को तुच्छ नहीं जानता है। वह सुंदरता को काम में ले सकता है। वह सुंदरता का रचने वाला है। इस दुनिया में कोई भी नहीं जो पृथ्वी पर उपस्थित सौंदर्य को अनदेखा करे। मेरे मित्रों, सूर्यास्त हर स्थान में महिमा की बात है। परमेश्वर सुंदरता का विशेषज्ञ है। मुझे अविश्वासी संसार में व्याप्त योग्य एवं सुंदर वस्तुओं से ईर्ष्या होती है। आज सुंदरता और प्रतिमा परमेश्वर को समर्पित क्यों नहीं है? मेरे प्रियो, दाऊद एक रूपवान युवक था, परंतु परमेश्वर ने इस कारण से उसे नहीं चुना था कि वह बहुत रूपवान है। परमेश्वर उसका मन जानता था। वह परमेश्वर की पसंद था। उसके बारे में आप और मैं जो नहीं जानते, वह परमेश्वर जानता था। यद्यपि दाऊद भी चूका, परंतु उसका भीतरी विश्वास नहीं चूका। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था और उस पर भरोसा करता था। वह उसकी संगति में चलना चाहता था और परमेश्वर ने उसे परिपूर्ण दंड दिया। परंतु दाऊद ने न तो शिकायत की और न ही आवाज उठाकर रोया। वह परमेश्वर के साथ ऐसी संगति चाहता था और परमेश्वर उससे प्रेम करता था। वह परमेश्वर के मन का मनुष्य था। मेरे मित्रों, आज आप किसके मन के मनुष्य हैं? क्या आज परमेश्वर की आज्ञा पर आप चलना चाहते हैं या संसार के उस चकाचौंध को देकर उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं? आपको निर्णय लेना है। हम पहला शामुएल 16 अध्याय के 13 पद में आगे पढ़ते हैं, तब शामुएल ने अपना तेल का सिंह लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रमा को चला गया। मेरे मित्रों, शामुएल ने दाऊद का अभिषेक किया तो परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया। इस समय परमेश्वर का आत्मा शाऊल के पास से चला गया था। पहला शामुएल 16 अध्याय उसके 14 से 16 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छी वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। मेरे विचार में शाऊल पूरी तरह शैतान के वश में था। उसके सेवक उसके मानसिक व्यथा, उसकी आत्मिक रोगावस्था और उसके हर एक एक्टिविटीज अर्थात कार्यकलाप को भांप गए थे। कहा जाता है कि संगीत में जंगली जानवर को भी वश में करने की शक्ति है। शाउल के सेवकों ने सर्वप्रथम संगीतकार खोजने के लिए प्रतियोगिता रखी और दाऊद भी एक संगीतकार था। हम पहला शामिल 16 अध्याय उसके 17 से 23 पद में पढ़ते हैं। शाउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम बजवाया देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन मैंने बेतलहम में इशय के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाउल ने दूतों के हाथ इशय के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब इशय ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाउल के पास भेज दिया और दाऊद शाउल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाउल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाउल ने इशय के पास कहला भेजा कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाउल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। मेरे प्रिय मित्रों, दाऊद अनेक प्रकार से असामान्य व्यक्ति था। दाऊद को राजमहल में लाया जाता है। परमेश्वर किसी भी पद या काम के लिए मनुष्य का चुनाव करते समय उसके मन को देखता है। शाउल को परमेश्वर ने त्याग दिया था और दाऊद को वीणा बजाने के लिए नियुक्त किया गया। अभी किसी को भी जानकारी नहीं थी कि इसराइल का नया राजा चुन लिया गया है। सिर्फ शामुएल और परमेश्वर इस बात को भली भांति जानते थे। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 17 से जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर दाऊद को प्रशिक्षण देता है। अध्याय 17 सबका चिर परिचित अध्याय है, दाऊद और गोलियत की कहानी। मानवीय साहस से अधिक कुछ और कहती है। इसमें व्यक्त है कि युवा होते हुए भी दाऊद का मन परमेश्वर के लिए ही था। गोलियत का सामना करने में उसका उद्देश्य अपने लोगों को लज्जा से मुक्ति दिलाना नहीं था। उसका युद्ध करने का कारण था कि गोलियत जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा था। उसे दुर्जय वैरी का सामना करते समय उसने परमेश्वर में अपने विश्वास की गवाही दी। पद 15 में हम पाते हैं, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इसराइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। मेरे मित्रों, दाऊद गत के दानव गोलियत का सिर काटता है। पहला शामुएल 17 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपिसमीम में डेरे डाले और शाउल और इसराइली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। ध्यान दें, इसराइल अपने सदा के वैरी फलिस्तियों से युद्ध कर रहा था। तब हम पहला शामुएल 17 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, फलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इसराइली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। मेरे मित्रों, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। वे युद्ध के लिए तैयार थी परंतु युद्ध करना नहीं चाहती थी। यह इसराइल के आज के संघर्ष जैसा है। सूएज केनाल के एक ओर इसराइली सेना थी और दूसरी ओर मिस्र की सेना थी। इसी प्रकार एक पर्वत पर इसराइली सेना थी तो दूसरी पर्वत पर फलिस्ती सेना थी। उनके बीच में एक घाटी थी। फलिस्ती अधिक उग्र थे। पहला शामुएल 17 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, तब फलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झीलम पहने हुए था जिसका तौल 5,000 शेकेल पीतल का था। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि एक हाथ 18 इंच का होता है और बित्ता 9 इंच का। इस नाप के अनुसार वह 9 फुट 9 इंच लंबा था। सैनिक गोलियत और एक इसराइली के हाथ में युद्ध का परिणाम छोड़ चुके थे। पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल के लिए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इसराइली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांती बांधी है? क्या मैं पलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। मेरे मित्रों, गोलियत प्रतिदिन इसराइल को चुनौती देता था कि उससे लड़ने के लिए एक व्यक्ति को भेजा जाए। 40 दिन तक कोई सामने नहीं आया। दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आता है क्योंकि उसके भाई सेना में थे। दाऊद को आश्चर्य हुआ कि उसकी चुनौती स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उसके भाइयों ने उसे घर भेजने का प्रयास किया परंतु वह नहीं गया। जब शाऊल ने सुना कि दाऊद उसका सामना करने को तैयार है, तब उसने दाऊद को अपना झिलम और टोप पहनाया। दाऊद अभी बालक ही था। उसने कहा, मैं इसे पहनकर लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने इनका अभ्यास नहीं किया है। मैं केवल अपने साधन को ही सहायता के रूप में लूंगा। इसमें हमारे लिए कैसी उत्तम शिक्षा है। हम जो नहीं है वह न करें या वह काम करने का प्रयास न करें जो हमारी बुलाहट नहीं है। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर ने आपको गोफन चलाने के लिए बुलाया है तो तलवार चलाने का प्रयास न करें। यदि परमेश्वर ने आपको प्रवचन सुनाने हेतु बुलाया है तो प्रवचन सुनाएं। यदि उसने आपको कोई और काम करने को बुलाया है तो वही काम करें। यदि परमेश्वर ने आपको गाना गाने के लिए बुलाया है तो गाना गाएं, परंतु यदि उसने आपको गाना गाने के लिए नहीं बुलाया है तो कृपया गाना ना गाएं। अनेक जन तलवार चलाना चाहते हैं जबकि गोफन ही उनके लिए उचित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपको दिया गया है आप उसे करें, दूसरे चीजों को करने का प्रयत्न ना करें। पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 40 पद में हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिस्ती के निकट चला। 5 ही पत्थर क्यों चुने? इसका उत्तर दूसरा शमूएल 21 अध्याय उसके 22 पद में है। लिखा है, ये 4 गत के उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए थे। मित्रों, गोलियत के 4 पुत्र थे और दाऊद जानता था कि पिता के मरते ही वे बाहर आएंगे। यही कारण था कि दाऊद ने 5 पत्थर चुने थे। पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 45 से 47 पद में हम पढ़ते हैं, दाऊद ने पलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इसराइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और आज के दिन पलिस्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि पृथ्वी में एक परमेश्वर है और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। मेरे मित्रों, आगे की कहानी तो आपको पता ही है। परमेश्वर ने दाऊद को विजयी बनाया, उसने गोलियत को मार गिराया। युद्ध परमेश्वर का था और वह दानव दाऊद के हाथ में कर दिया गया। मेरे मित्रों, इस अध्याय में अनेक महान शिक्षाएं विहित हैं। उदाहरण के लिए, दानव संसार का प्रतीक है, शाऊल मेरे विचार में शैतान है और दाऊद प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी का प्रतीक है। पहला योना की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में हमें चेतावनी दी गई है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जी हाँ, हम संसार में हैं परंतु संसार के नहीं हैं। दाऊद और शिमशोन में कैसा अंतर है। शिमशोन पलिस्तियों से मित्रता निभाता था, उसने उनमें विवाह भी किया, परंतु दाऊद ने गोलियत को बैरी समझा। संसार, शिक्षा और मनोरंजन विश्वासियों का बैरी है। रोचक बात तो यह है कि दाऊद के विश्वास ने उसे इस योग्य बनाया कि वह सामने जाकर उस दानव से मुकाबला करे और उसे हराए। देखिए, पहला योना की पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मेरे मित्रों, यही सबक यहोशू ने यरीहो में सीखा था। उसने सीखा कि युद्ध परमेश्वर का है। दाऊद ने भी सीखा कि युद्ध करने के लिए सांसारिक अस्त्र शास्त्र की जरूरत नहीं है, अर्थात इसे काम में नहीं लिया जा सकता है। उसे अपने ही शास्त्र काम में लेने थे, अपनी विधि काम में लेनी थी जिसमें परमेश्वर ने उसे प्रशिक्षण दिया था। आज विश्वासियों को यह मानना होगा कि वे विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा ही संसार पर जय पा सकते हैं। मेरे मित्रों, आज आपका विश्वास किस पर है? क्या आपकी बुद्धि पर, आपके ज्ञान पर, आपके समझ पर, आपके धन दौलत पर, आपकी सामर्थ्य या शक्ति पर? आज दाऊद कहता है कि मेरा सामर्थ, मेरा लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। क्या आज आप ऐसा कह सकते हैं? मित्रों, आज आप किस ओर निहार रहे हैं? आज आपको और मुझे निर्णय लेना है कि हम परमेश्वर को अपना लड़ने वाला समझें, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, मेरा और आपका नहीं। मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वह आपको भी विजयी जीवन दे सकता है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु।
कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु।
तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम।
तो गालो यीशु नाम,
गालो ये सुना बन जाएंगे काम।
तो गालो ये सुना बन जाएंगे काम।
बोल यीशु मसीह की जय, के काम न आई इस दुनिया में। सब हर जाए,
दुनिया किसी के काम न आए, इस दुनिया में सब हर जाए।
दुनिया किसी